ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय है, चौदवा और श्लोक संख्या है 7, 8, 9, 10। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से वृत्रासुर का जो ये सबसे बड़ा रहस्य है कि एक राक्षस के शरीर में होते हुए भी एक विशुद्ध भक्त उसे विस्मित कर देता है, तो इसके बारे में जो चर्चा है तो हम आध्यात्मिक अनुसंधान से ही हम उसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके लिए रूपक के रूप में सुत गोस्वामी कहानी भी शुरू करते हैं, उसका पूर्व जीवन का वृत्तांत इत्यादि। तो पूर्व जीवन के लिए ये जो एक वास्तविकता है, पुनर्जीवन होता है, उसकी पुष्टि की गई है। ऐसा नहीं कि ये कपोल कल्पित रूपक के रूप में है, लेकिन जीवन तो सदा चलता ही रहता है, जीवन समाप्त नहीं होता है। तो इन चीजों में हमें जरा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना पड़ता है। तो ये जो सात आठ और नौ श्लोकों हम पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि उसमें परीक्षित महाराज का जो संशय है वो भी प्रकट होता है और सुत गोस्वामी उनका पर्याय देकर सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा है और सुखदेव गोस्वामी भी कैसे कहते हैं, इनका संदर्भ हमें मिल जाएगा। सातवां श्लोक है, अत्र न संशयो भूयाच् श्रोत्रम् कौतूहलम् प्रभो यह पौरुषेण समरे सहस्राक्ष अतो शोतयत्। अत्र यानी इस संबंध में न यानी कि हमारा संशय संदेह भूयान अत्यधिक श्रोत्रम् सुनने के लिए कौतूहलम् उत्कंठा कुतूहल प्रभो हे प्रभो यह जो पौरुषों ने पराक्रम से समरे युद्ध में सहस्त्र अक्षम जिनके 1000 नेत्र हैं भगवान इंद्र को अतोषयत संतुष्ट किया प्रसन्न कर लिए। अनुवाद है, हे प्रभो सुखदेव गोस्वामी यद्यपि वृत्रासुर पापी असुर था किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। ऐसे असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सकता है? इन विरोधी बातों में मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। सुत उवाच परीक्षितो अथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंद वचो अब्रवीत। श्री सुत उवाच, श्री सुत गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज परीक्षित का अथ इस प्रकार संप्रश्नम श्रेष्ठ प्रश्न भगवान अत्यंत शक्तिशाली बादरायणी व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी निशम्य सुनकर श्रद्धानस्य अपने श्रद्धालु शिष्य का प्रतिनंद्य अभिनंदन करते हुए वचः शब्द अब्रवीत बोले हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच शुण्वता वही तो राजन्नीतिहासम इमं यथा श्रुतम द्वैपायन मुखान नारद देवलादपि। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा शुण्वस्व सुनो अवहित अत्यंत ध्यान से राजन हे राजा इतिहासम इतिहास को इमम इस यथा जिस प्रकार श्रुतम सुना हुआ द्वैपायन व्यासदेव के मुखात मुंह से नारदात नारद से देवलात देवल ऋषि से अपि अपि भी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जो मैंने व्यासदेव नारद तथा देवल के मुखों से सुना है इसे ध्यान पूर्वक सुनो। आसीत राजा सार्वभौम सुरसेनेषु वै नृप चित्रकेतु इति ख्यातः यस्य आसित कामधृक् महि आसिद्राजा सार्वभौमः सूरसेनेषु वै नृपः चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासित कामधुक्महि आसित था राजा एक राजा सार्वभौमः चक्रवर्ती राजा सुरसेनेषु सुरसेन नामक देश में वही निसंदेह नृप हे राजन चित्रकेतु इति इस प्रकार ख्यात विख्यात यस्य जिसकी आसित थी कामदृक् समस्त आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली मही पृथ्वी। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा हे राजा परीक्षित सुरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नामक एक चक्रवर्ती राजा था जिसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी जैसा कि ईशोपनिषद मंत्र एक में कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजिता माग्रद कस्य स्विद्धनम। इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगम जो कुछ भी है वह भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है अतएव अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तु को ग्रहण करना चाहिए जिसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई है और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को स्वीकार करना नहीं चाहिए। परम नियंता कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है और जो हर प्रकार से पूर्ण है। भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये सारी आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, अतः पृथ्वी ही पूर्ति का स्रोत है। जब शासक उत्तम होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती है, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता है तो इनका अभाव रहता है। कामद्रुक शब्द का यहाँ यही महत्व है। श्रीमद् भागवत के अन्यत्र दूसरे पहले स्कंद के 10वें अध्याय और 4थे श्लोक में भी कहा गया है कि काम वर्वश पर्जन्य सर्व काम दुधामही। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है तो कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि उस पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण नियंत्रण है। अपनी आज्ञा से पृथ्वी अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकता है। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है जिससे कभी मनुष्य के लिए प्रचुर उत्पादन हो सकता है। तब किसी प्रकार से शोषण का प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि सबों के लिए पास प्रचुर अन्न होगा। तब कालाबाजारी तथा अन्य अपराध स्वयमेव बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में आध्यात्मिक योग्यता नहीं होती मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। इसे महाराज युधिष्ठिर परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी रहेंगे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीजटापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसीद राजा सार्वभौम सुरसेनेशु वैन्द्रुप चित्रकेतु रीति ख्यातो यस्यास का कामदुत मही। हे राजा परीक्षित, सुरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। अमेरिका चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है, उसी प्रकार रशिया भी और चाइना भी। अब पीछे अपना देश भी पड़ा है चक्रवर्ती बनने के लिए। कलयुग में चक्रवर्ती राजा बनने का चरित्र तो है ही नहीं, उसके बजाय शोषण वृत्ति का ही तो चरित्र होता है। उसे कुदरत के साथ यानी कि भगवान की प्रकृति के साथ मनुष्य की इच्छाओं का तालमेल कैसे बनेगा? नहीं हो सकता। प्रकृति की हमेशा विजय होती है। मनुष्य अपनी प्रकृति जो विकृत है उसे सुधारने का प्रयत्न करें तो अवश्य कुछ समतुलना प्राप्त हो सकती है, लेकिन कलयुग में सब समतुल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि समतुल है तो टिकता रहेगा, लेकिन ये तो नाशपंथी युग है, कालक्रम से नाश होने वाला है। तो मनुष्य की जो प्रकृति है अविनाशी प्रकृति को छोड़कर काम चलाओ भौतिक प्रकृति या अपनी ही विचार शक्ति में जो भौतिकता कितनी है और आध्यात्मिकता कितनी है उस उतना तो एक राजा के लिए काफी आवश्यक होना चाहिए। भौतिकता कम तो उसके लिए, भौतिकता कम करने के लिए तो कितनी तपस्या कलयुग में करनी पड़ेगी। भौतिकता कम करने के लिए ही तो तपस्या है ना, विरक्ति या भौतिकता से हमें आधार नहीं रखना पड़ता है। भौतिकता पर आधार रखोगे तो नाशपंथी युग में हमारे सारे प्रयत्न फेल होते हैं। जब सिर्फ शरीर और आत्मा बने रहे उतनी चीज आवश्यक बनाकर प्राप्त करने में कोई कर्म भी छूता नहीं, कर्म के बंधन भी नहीं छूते, लेकिन आवश्यकता के उपरांत जब हम प्रयत्नशील रहते हैं, कार्यशील रहते हैं, सारी योजना हमारी आवश्यकता के उपरांत करने को बता दे तब असंतुलन होता है। असंतुलन का कारण मनुष्य की प्रकृति और भौतिक प्रकृति में भेद है। भौतिक प्रकृति भगवान के संचालन में है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति भगवान के संचालन में नहीं है, वो भौतिक प्रकृति के संचालन में है, यानी कि सेकंड ग्रेड। भगवान के सीधे संचालन में मनुष्य की प्रकृति नहीं है, जबरदस्ती करती है भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति गुणात्मक है, तो जो हमेशा जन्म मरण का कारण बनती है ऐसी भौतिक प्रकृति में चाहे लाख करे उपाय असंतुलन बनाने के लिए मनुष्य इस कलयुग में अगुवाई कर रहा है। मन संतुलन नहीं बनाना चाहता, असंतुलन बने रहे। एक देश के भोग दूसरे देश का फायदा उठाना, उसे ये भौतिक प्रकृति की जो पेदास है वो उसे मदद नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा चीजों का उत्पादन चाइना में हो रहा है ना, तो चाइना की प्रकृति देखो किस पर टिकी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं ये खनिज तेल जो निकलता है ना उसमें से प्लास्टिक बनता है, जिसकी प्रकृति के जो विनिमय होता है आपले होती है उसका आधार सोना नहीं प्लास्टिक है। वो प्रकृति क्या उसका विकास हो सकता है या नाश हो सकता है? विकास होता ही नहीं, थोड़ी देर लगता है, थोड़े समय तक लगता है, लेकिन देखो ये प्लास्टिक जलने लगेगा। तो ये मनुष्य की प्रकृति भौतिक प्रकृति संचालन करती है, गुणात्मक है, और मनुष्य की प्रकृति भोग भोगने की इच्छा से वो जूठा पुरुष के रूप में बाहर आती है, जूठा पुरुष। तो मनुष्य की प्रकृति को इसी प्रकार भागवत में, नहीं भगवत गीता में ये कहा है कि पुरुषः प्रकृति स्थोपी भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद सद्योनि जन्मशु। पुरुषः भोक्ता, पुरुष यानी भोक्ता, मनुष्य भोक्ता नहीं उपभोक्ता है, लेकिन जब उपभोक्ता से भोक्ता बनना चाहता है तो, लेकिन प्रकृति तो गुणात्मक है, तो पुरुष जूठा भोक्ता प्रकृति स्थोपी प्रकृति में, यानी कि भौतिक प्रकृति में स्थिर है, आध्यात्मिक प्रकृति में स्थिर नहीं है, भौतिक प्रकृति में स्थिर है। तो भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति का सारा उत्पादन त्रिगुणात्मक है, तो क्या भोगता है? गुण गुण को भोगता है। पुरुष तो वैसे ही असंतुष्ट रहता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता, गुणों गुणों को भोगते हैं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति धारयन, हमें समझना चाहे धारणा ऐसी करना है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति को उपभोग करने से हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। चक्रवर्ती राजा की ये जिम्मेदारी रहती थी कि जगत का कल्याण करने के लिए भौतिक प्रकृति कैसे साथ दे सकती है, यदि भगवान की आज्ञा में वो जो काम करती है तो वो आज्ञा सर्वप्रथम इस भक्त में, राजा जो बनेगा चक्रवर्ती राज उसमें होनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज लायक थे, परीक्षित महाराज लायक थे, इसी तरह ये चित्रकेतु भी लायक, बाकी सब नालायक, चाहे वो चाइना में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो। ये जो भौतिक प्रकृति की पैदाश, चाहे मेड इन इंडिया नहीं तो मेक इन इंडिया, क्योंकि पैसे का ही मामला था ना, और आया है सारा पैसा, देखो कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, लेकिन होता है कम, ये तो दूर की बात रही है। जितनी जो भौतिक प्रकृति का आधार लेकर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होना चाहिए वो तो होता ही नहीं, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? चाइना में भी थोड़ी देर हुआ तो उसका फायदा जो भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं इनको हुआ है, जो पर्याप्त रूप में जिनको अपना शरीर का निर्वाह करना है उनको तो नहीं हुआ है, यानी कि चाइना के गरीबों को फायदा नहीं हुआ है, पैसे दवालों को ज्यादा फायदा हुआ है। इसलिए इन लोगों ने देश प्रदेश में जाकर, जैसे जापान ने किया था, जापान में हवाई आइलैंड सारा जापानीज ने खरीद लिया था, ये सब पैसे आए। उसी तरह चाइना भी निकला है, जहां देखो वहां चाइना प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक इकोनॉमी। तो ये जो भौतिक प्रकृति पर आश्रित हैं, वो भौतिक प्रकृति वाला उसे भोगे तो क्या भोगेगा? भौतिक त्रिगुणात्मक ही अपने आप में भोगते हैं, जीव को संतोष नहीं क्यों होता है? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति का है ही नहीं। इसलिए चक्रवर्ती राजा जो होते हैं इनका इनके पास राजगुरु होते हैं, राजगुरु या कि बड़ा गुरु नहीं लेकिन आध्यात्मिक गुरु होते हैं। चलो शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों में अंतर क्या है? दोनों के पास विद्या है और अपने जो जो भावात्मक दृष्टि से एक भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो दूसरे अपनी इंद्रियों को समर्पित करते हैं राक्षस लोग। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु क्यों हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रकृति जो भौतिक प्रकृति की मूल जनेता है इसको यानी कि भगवान को जो आध्यात्मिक प्रकृति है और जीव आध्यात्मिक प्रकृति का, तो दोनों में संतुलना बनाए रखने में भौतिक प्रकृति की मर्यादा में उपभोग करने की बात। इसीलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, भगवान ने बनाया है तो भगवान का ही है, मनुष्य का क्या लागे उसे, वो तो हड़प करना चाहता है क्योंकि भौतिक प्रकृति लेकर बैठा है। तो ये क्यों कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, सबको शरीर निर्वाह करने के लिए जितनी आवश्यक तो वो भी आवश्यकता मर्यादा में है क्योंकि शरीर का पोषण तो भौतिक प्रकृति से होता है लेकिन रजो अधिक कर्म परा, जब ये प्रकृति मनुष्य की आती है जिसमें अधिक रजोगुण ब्रह्मा जी ने डाल दिया है वो तो कर्म परा यानी कि हाइपर एक्टिविटी, भौतिक प्रकृति से काम करते रहते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति से काम नहीं करते। एक भक्त के जीवन में भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों में जब भेद पारखू दृष्टि हमें भगवद गीता या श्रीमद भागवत से प्राप्त होती है, क्या सत है क्या असत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत, उभयोरोपि दृष्ट अंत तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी यानी कि परम सत्य का परिचय करने वाला भौतिक प्रकृति पर इतना आश्रय नहीं लेगा, वो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति पर आश्रय लेता है। तो ऐसे व्यक्ति ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, ये द्वंद है भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, और मनुष्य अपने को जो भक्ति प्रकृति मानता है यानी कि कर्मी लोग जो भगवान के भक्त नहीं कहलाते, भगवान के ये दोनों प्रकृति को जानने के लिए जिसके दिमाग में मनुष्य होते हुए भी भेद पारखना नहीं जानता वो पशु समान है, वो पशु समान नर पशु कहलाता। तो इतना होते हुए भी ये प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थूपी भुंक्ति प्रकृति जान गुणान, भुंक्ति यानी के वो प्रकृति के गुणों को भोगता है, भुंक्ति यानी भोगता है, उसमें क्या एंजॉयमेंट मिलेगा, चूइंग द चूर वेर देर इज नो जूस, पुनः पुनः चर्वितम चर्वणान, ये भौतिक प्रकृति के कारण है। लेकिन ये आदत मनुष्य जन्म में तो जानी चाहिए, बुरी आदत है। जब चक्रवर्ती राजा बनना है ऐसी भावना के सारे विश्व पर भारत विजेता बने तो उसे ये भेद पारखू दृष्टि तो होनी ही चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के बाद मनसूबे होते हैं लेकिन भौतिक प्रकृति की समस्या कितनी मात्रा में है वो जानने को यदि आपको मिलेगा, लेकिन जानते ही नहीं क्योंकि हर रोज नई नई समस्या निकलती है और भौतिक प्रकृति में जुड़े हुए कितना विरोध करते हैं, ये संघ काशी नहीं जाएगा, रास्ते में ही कहीं बिखर जाएगा। तो भक्तों का जीवन इन 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 राजनैतिक और भौतिक प्रकृति पर आश्रित जो नीतियां हैं उन पर भक्तों का जीवन का आधार नहीं है। एक वृत्रासुर, हाँ, भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी के सामने क्यों चैलेंज दे रहा है? भौतिक प्रकृति में उसको जानबूझकर एक राक्षस के शरीर में चित्रकेतु को फंसा दिया दुर्गा देवी। और शिव जी मना करते रहे कि पार्वती उसको श्राप मत दे, ये भक्त है। अंदरूनी प्रकृति जो है अपनी आध्यात्मिक प्रकृति, वो प्रकृति दैवी प्रकृति कहलाती है। तो भगवान स्वयं प्रतिपादित करते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्तिम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा लोग, महात्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा को ही ऊपर रखने वाले, आत्मा को ही बड़ा समझने वाले महात्मा कहलाता है। हम तो छोटे लोग अपनी आत्मा को महान समझते ही नहीं। ए, पता नहीं इतना छोटा सा कण कहां घूम रहा होगा अंदर, मरते समय कहां से निकलता है वो भी पता नहीं। जब वो द्वार खुला हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये द्वार से चला गया। नौ द्वार होते हैं ना शरीर में से, कौन से द्वार में से कहां जाता है? ज्यादातर भौतिक प्रकृति को आश्रित रहने वाले नरकगामी द्वार से ही जाते हैं। तो भौतिक प्रकृति को हम कब तक भोगते रहेंगे? ये भोगने के लिए प्रकृति नहीं बताई भगवान। आवश्यकता तो ये शरीर अपना कर्तव्य पूरा करें और उसकी पूर्ति के लिए बनाई है। शरीर में सारी इंद्रियों को अंग आधार देते हैं, अंगों की व्यवस्था, खुराक पहुंचाना इत्यादि जो काम है। लेकिन दुर्बुद्धि तो मनुष्य में ब्रह्मा जी ने अधिक रजोगुण द्वारा दे दी है। तो कर्म परा यानी कि हमेशा प्रवृत्तिशील स्वभाव, प्रवृत्ति में वृत्ति क्या है? प्रबल, प्रबल वृत्ति होती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति में जब इसको निर्बल बना देते हैं तब निवृत्ति आती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये मनुष्य हर मनुष्य के लिए ये विचित्र प्राणी ऐसा है कि जो अपनी इच्छाओं में फंसेगा और भौतिक प्रकृति की इच्छा रखने वाला, आध्यात्मिक प्रकृति की इच्छा रखने वाला नहीं है। वो तो लाखों में से एक होता है। तो वो कहते हैं कि अरवाक स्त्रोत्र तु नवमम क्षत्तम एको वृद्धो नृणाम रजो अधिक कर्म परा दुखे च सुख मानिना। ये तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि बताते हैं विदुर जी के प्रश्न के उत्तर में। ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि की? तो कहते कि 10। तो पहली 8 तो सामान्य पशु तक, एक छोटा सा जीव से लेकर चौपगा पशु से, जो सारे प्रकृतियों का नियम का पालन करते हैं, ऐसी प्रकृति बनाई ऐसी, और समय समय अनुसार इनकी प्रकृति में जो प्रवृत्ति है पशुओं की वो भौतिक प्रकृति को आश्रित और उसकी मर्यादा में काम करती है। लेकिन ये नवमी प्रकृति मनुष्य की बनाई है तो बहुत विचित्र बनाई है। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के अधीन हैं, सब है, लेकिन आठ प्रकार की प्रवृत्ति प्रकृति है सारे जीवों की। तो करीबन उसमें तो कितनी देवता और दानव को छोड़ के कम से कम 80 लाख तो प्रकृति है, 4 लाख मनुष्य की बनाई है, 4 लाख मनुष्य की प्रकृति है, इनके अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। कितने हैं भागवत में क्या लिखा है, 4 हैं या 1 लाख है, 10 लाख है, 4 है, 4 लाख मनुष्य की प्रकृति। ये 4 लाख में अलग अलग प्रकार के मनुष्य आते हैं, जातियां आती हैं, प्रजातियां आती हैं, सब कुछ। तो इन लोगों के लिए शायद इसमें देवता और दानव की योनि भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी मनुष्य जैसे ही दिखाई देते हैं, कम से कम हाथ और पैर हैं और पैर से खड़े होते हैं। तो ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं 3rd skand में कि अर्वाक स्त्रोत्र तु नवमम, इसका पेट उल्टा हुआ है और लटकता हुआ है, ये पेट पर प्रकृति बनती है, ये नवमी प्रकृति का पेट लटकता है। अभी तक पशुओं का पेट धरती के समांतर है, भौतिक प्रकृति के समांतर है। कहने का मतलब ये लोग उल्लंघन नहीं करेंगे प्रकृति के कानूनों का, लेकिन ये जो उठा है दो टांग से खड़ा हुआ है तो उसका पेट भी लटकने लगा। तो अर्वाक स्त्रोत्रम बताया है उसका, स्त्रोत्रम यानी जठर पेट, अर्वाक स्त्रोत्रम तो नवमम, ये नवमी प्रकृति, क्षतम विदुर एकोन्द्रणाम, उसका नाम है नर, रजोधिक, इसमें रजोगुण ज्यादा डाल दिया है भौतिक प्रकृति, इसलिए कर्मपरा, कुछ न कुछ करता रहूंगा, भौतिक प्रकृति को कंट्रोल में करने की भावना सोचता है, नहीं मैं उसका उपभोग करूंगा, जो देखूं वो मेरा होगा, ऐसी इच्छा, रजो अधिक कर्म परा। लेकिन दुखे च सुख मानिना, मान्यता कहां है दुख पर, दुख का तो अनुभव हरेक को करना पड़ता है, शरीर दुख देने वाला है स्रोत, और उसमें खोपड़ी भी उल्टी बनी तो शरीर को और पीड़ा देगा। तो दुखे च सुख मानी ना, अरे भैया आप लोगों का सुख की गिनती दुख के आधार पर है, ऐसा तो कोई सोचता है, कभी सोचा है कि हम कितने सुखी हैं, इसका मतलब हम कितने दुखी हैं, वो तो पहले देखो बाद में सुख की भावना करो। हम अपनी गिनती दुखों के आधार पर करते, क्योंकि दुख रोकड़ा है, वो आएगा ही आएगा, बिना बुलाए आएगा, लेकिन कर्म परा है तो हम सुख के लिए कर्म परा बन जाते हैं। तो ये प्रकृति, देखो स्वभाव, अभी अभी जो प्रकृति मनुष्य की त्रिगुणात्मक रहती है सत्व रज और तम गुण में, तो वो भौतिक प्रकृति जो दुर्गा देवी है इसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी, लात मारेगी ही नहीं, लात मारेगी ही नहीं। चलो निर्दोषता ये सारे पशुओं में है, लेकिन मनुष्य दोषी क्यों है? और देवता और दानव भी आप आसपास बीच में झगड़ते रहते हैं, तो उसको उन लोगों को भी दुख तो आता है। तो ये नवमी और दस प्रकृति को, दसवीं प्रकृति को ही दुख होता है। दुख यानी जानबूझकर बुलाते हैं, बेवकूफी से जानबूझकर दुख बुलाते हैं। एक चक्रवर्ती राजा जानबूझकर लोगों को दुखी क्यों देख सकेगा कभी? जो ये दुखों का निवारण करने के लिए उपाय दिया है वो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक प्रकृति द्वारा दुखों का निवारण होगा। इसीलिए जो मनुष्य भगवान का नाम जप नहीं करता वो मनुष्य नहीं, पशु है। भौतिकता का श्रृंगार एक मृत शरीर पर श्रृंगार करने का बराबर है। अप्राणस देहस्य मंडनम लोकरंजनम, अप्राणस्य देहस्य, ये देह में प्राण तो है लेकिन जो प्राण की जो कीमत नहीं जानता या प्राण के लिए कुछ नहीं करता, तो देह में प्राण होते हुए भी अप्राणस्य जैसा बन जाता है। और लोकनम मंडनम लोकरंजनम, लोकरंजन यानी एंटरटेनमेंट, ये शरीर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ही प्रख्यात है। तो देखो ये भौतिक प्रकृति में, और हम समझते रहे हैं कि ये तो काफी विख्यात एक्टर हैं, चलो अभी उसको सारे देश के लिए आना चाहिए तो नेता बन जाता है। लेकिन अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, उसके प्राण की कोई कीमत नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि ऐसा काम उसने कराना है। जबकि चक्रवर्ती राजा बनना, अम्बरीश राजा, परीक्षित राजा, युधिष्ठिर राजा, ऐसा चक्रवर्ती राजाओं की श्रृंखला तो कितनी दी है, ये सब सारी पृथ्वी पर राज करते थे, एक छोटा सा देश और देश में भी जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी राज कर रही है, एक क्या तमाशा बना रखा है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, ये तो सब हारेंगे, किसी को फायदा नहीं होगा। तब भक्त लोग को इन चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान की अंतरंगा प्रकृति के सेवक बने रहे, इतना ही आवश्यक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।